स्थिति में हमने सुना है ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा सुपंडित खोज। ढाई अक्षर का ये बना हुआ प, उसमें लग गया है र, उसमें एकार लग गया है प्रेम, या ढाई अक्षर है। किंतु जो पढ़ा सो पंडित हो, आज जो नहीं पढ़ा वो पंडित नहीं। जगत के लोग पढ़ पढ़ करके मर गए, कोई पंडित नहीं हुआ। प्रेम नहीं पढ़ा, ढाई अक्षर पढ़ने को नहीं मिला। इसी को हम एक रामचंद्र जी के उपाख्यान से और कृष्ण के उपाख्यान से, दोनों लीलाओं से हम बतलाएंगे ये क्या चीज प्रेम है। अब तो जिसको पानी पीना है वो पीने, इसके बाद में बंद कर दो, मैं तो वो डिस्चार्ज करेगा। जिसको पानी लेना है वो ले लो, इसके बाद में दम बंद। अब पानी वाली मत मांगो, अब कोई मांगे तब लाना, अपनी मन से मत लाना। हमारे महाप्रभु के कृपा पात्र रूप गोस्वामी ने उत्तम भक्ति का लक्षण बताया। इसके पहले भक्ति के लक्षण वेदों में और दूसरे पुराणों में ये सब उल्लिखित, क्योंकि महाप्रभु जी की प्रेरणा से रूप गोस्वामी ने भक्ति का जो डेफिनेशन दिया, परिभाषा, वो अपूर्व था। भगवान के चरणों में फूल देना ये भक्ति है। साधारण लोग आशा करते हैं, भगवान का नाम ले लेना ये भी भक्ति है। माता की और पिताजी की भक्ति भी ये भक्ति है। इसी तरह से साधारण रूप में ये सब क्रियाएं भक्ति को मान लिया जाता था, या साधारण लोग अभी भी मानते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते चीनी को बहुत सारे चीज चीनी और सबको मिला करके देते हैं, कबूतर को वो देखा है जयपुर में बोरा का बोरा ज्वार लेकर के छींक देते हैं और दिन रात कबूतर लोग खाते रहते हैं। जयपुर के मंदिर में भी ऐसा होता है। ये सब क्रियाओं को ही भक्ति मान लेते हैं, किंतु भक्ति किसको कहते हैं? हमारे रूप गोस्वामी ने कहा इसके पहले भक्ति के लिए बदला, सा परानुरक्ति ईश्वरे। सा परानुरक्ति ईश्वरे, ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति जो परा अनुरक्ति है, उस अनुरक्ति को कहते हैं भक्ति। कहीं कहीं ये लिखा गया लौकिकी वैदिकी वापी जाक्रिय क्रियते मुने हरि सेवानुकुलेव साकार जा भक्ति। लौकिकी वैदिकी वापी जा क्रिया क्रियते, लौकिकी क्रिया, वैदिकी क्रिया, और जो लौकिकी और वैदिकी नहीं है, लोक अनुसार में चल रही है कोई भी क्रिया, यदि भक्ति के अनुकूल है, कृष्ण के प्रीति के अनुकूल है, तो उसको, उस क्रिया को भी रूप गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में भी लिखा, सब ऐपुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति जे अह तुक्य प्रतिहता जयात्मा संप्रत। परीक्षित महाराज का काल आ गया है, मरने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं। संसार से उन्होंने अपनी आसक्ति हटा ली। 7 दिन के अंदर में तुमको जो कुछ करना है कर लो, जिस ऋषि के पुत्र ने अभी संपाद दिया था, मैं 7 दिन का तुमको समय में इसमें जो इच्छा हो तो कर। क्या करेंगे? गंगा के किनारे बैठ गए, प्रायोपवेशन। पानी के लिए तो हमारी ये दुर्गति हुई, ऋषि के गले में सांप था। अब पानी भी नहीं पिएंगे, खाएंगे भी नहीं, सोएंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या करना चाहिए ये चिंता कर रहे हैं, और इतने में लाखों हजारों ऋषि लोग आ गए, ब्रह्मज्ञान जो खुद भविष्य को बदल सकते हैं। ऐसे ऐसे कर्म की रेखा को मिटी नहीं जाती, उस रेखा को भी मिटाने वाले ऐसे ऐसे ऋषि उसमें आए। उन्होंने प्रश्न किया, सुखदेव गोस्वामी भी आ गए। नंग धड़ंग कोई प्रयोजन नहीं, भिक्षा की भी जरूरत नहीं, जो कपड़े नहीं पहनते हैं, भूख ही नहीं लगती, उनको क्या जरूरत है? तो भी उस सभा में आ गए। तो उन्होंने पूछा, जो फर्म है हमारे लिए, वो बताए कि हमारे लिए क्या करनी है। मैं 2-1 दिन में मर जाता, 7 दिन की मृत्यु है, और जो कोई ठीक नहीं है गारंटी कि कल मिलेंगे कि अभी मरेंगे कि परसों की बरसों, कोई ठीक उन लोगों के लिए क्या करना है? आप निष्कपट रूप में हमको बतलाइए, कोई छल छंद नहीं, आपको मुझसे लेना देना कुछ नहीं है। आदमी जब स्वार्थ में बधा होता है तो दूसरों को ठगने के लिए उसके मन के मुताबिक बात करता है। आपने तो हमारा अन्न खाया नहीं, जल खाया नहीं, आपको मुझसे लेना भी नहीं है, आप हमको प्रसन्न भी नहीं करना है। आप सीधी सीधी चुपती चुपती जैसी भी बात हो सच सच बतलाए हमारे लिए क्या कर सकते हैं। और जो 7 दिन की मुक्ति भी नहीं है, आज भी मुक्ति है, अभी पल में परलय हो यगी, अभी पल में मृत्यु हो जाएगी, अभी जानते नहीं है। दिल्ली वहां से मथुरा से आ रहा था, कार में हम लोग आ रहे थे, देखा जी 2 कार चकनाचूर पड़ी हुई है, और उसके ऊपर में नीम का एक बहुत बड़ा भारी मोटा गिर गया। आंधी आई थी और बरसात जोरों से हो रही थी, और गाड़ी स्पीड में है, अब स्पीड में है गाड़ी, और पेड़ गिरने वाला है, और बतलाइए जैसे कितना सेकंड लगा होगा कि उसके नीचे आकर के आगे नहीं जा सका। कितने अंततः 60-70 की स्पीड से तो गाड़ी चली गई होगी, अब पेड़ के गिरने में भी तो कुछ सेकंड लगेंगे, किंतु ऐसे मोमेंट में गिरता है वो पेड़ जो आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ सका, और वहां पर वो दोनों खत्म, गाड़ियां दोनों टूट गई। अब उसमें कितने आदमी मरे कि नहीं मरे, क्या हुआ नहीं, ये पता नहीं, कि वो दोनों गाड़ियां चकनाचूर हुई पड़ी। कितना सेकंड लगा, कभी 1 मिनट पहले वो सोचा होगा कि अभी तुरंत पेड़ आगे से गिर रहा होगा है? वो एक बाइक नहीं गिरता गाड़ियों के साथ, तो ऐसे ऐसे गिरा होगा, किंतु गाड़ी का फोर्स ऐसा ठीक उस फोर्स से आई और पेड़ गिरा उसी के नीचे, वो सब 1 सेकंड सोचने का समय नहीं मिला होगा।
सुनियोजित योजना हो गई, ये सब
हम लोग होते तो हो सकता था निकलता राम राम कृष्ण को लिया जाता, साधारण लोगों के ये सब चीज मिल जाएगी। मृत्यु का कोई ठीक नहीं है ये कब आ जाएगी, परीक्षित महाराज का तो गारंटी है उसके पहले मृत्यु नहीं आएगी है ना? हम लोग की गारंटी कुछ नहीं है, क्या कब हो जाएगा, कल में पतला हो। इसलिए उन लोगों के लिए क्या कर्तव्य है, ये 1 सेकंड में मृत्यु आनी है, 1 सेकंड में उसका कल्याण कैसा है ये भी बतला दिए। ऐसा हो सकता है कि नहीं 1 मिनट में 1 सेकंड में भी कल्याण हो जाए, कैसे होगा? यदि मरते 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 राम या कृष्ण का नाम आ गया, भगवान का नाम, और कोई दूसरा उपाय है? इसलिए परीक्षित महाराज जी से प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा जी अच्छा तो ठीक है, सुनो हमारे बात से विश्वास है या तो पक्का विश्वास। पहले पक्का विश्वास के साथ में ये सब चीजें सुननी चाहिए, अब विश्वास नहीं है तो वो सुन करके वो काम से ही बदल कर रहे पक्का विश्वास के साथ। वो सुन रहे थे किस लिए? परीक्षित महाराज जी के सुनने और हमारे सुनने में अंतर है कि एक ही है, कि संसर वो दृढ़ प्रतिज्ञा करके उसको परिणत करने के लिए सख्त संकल्प करके बैठे हुए हैं। जो ये महात्मा कह देंगे और हम लोगों में क्या है, यदि हमारे अनुकूल होगा तो मानूंगा, नहीं तो आपकी बात नहीं मानूंगा। हम भी कहते हैं यदि हमारी बात अच्छी लगे तो करो और ना अच्छी लगे तो मत करो। वहाँ पर ये सब चीजें नहीं है,
अच्छा लगे अपना लो, जब बुरा लगे
आइए आप लोग बैठिए। तो हाँ क्या बतला रहा था
वो,
उन्होंने कहा सभी पुंसान परो धर्मो जतो भक्ति गये, उनको भी बैठाइए
थोड़ा थोड़ा और ट्रिंक हो जाए।
आ जाइए, बहुत काफी जगह है इसमें। तो सभी पुंसान परो धर्मो जतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। उसमें संस्कृत मातृभाषा थी जिस समय की बात, सभी लोग संस्कृत समझते। सुखदेव गोस्वामी ने संस्कृत भाषा में ये बतलाया, संस्कृत भाषा माने सुधरी हुई भाषा जो प्रभु तक भी पहुंच सकती है, ये भाषाएं वहां तक नहीं पहुंचती, ये इसके संस्कृत भाव हों तो पहुंचे, संस्कृत बने सुधरी हुई भाषा। तो सवाई पुंसान, वही माने शब्द का अर्थ होता है निश्चित रूप से पृथ्वी डोल जाए वो नहीं डोलेगा, वो निश्चित रूप में होगा ऐसा। तो सवाई पुंसान परो धर्मो, यदि कोई इस विश्व ब्रह्मांड का जो संचालन करने वाला समस्त ईश्वरों का जो ईश्वर है, जो सबका आदि है किंतु स्वयं अनादि है, दूसरे का तो आदि है वो सब उसी से निकलते हैं और स्वयं कैसा है उसका कोई आदि नहीं, वो जो परमेश्वर है उनको पुरुषोत्तम कहते हैं भगवान, उनके चरणों में अहेतु की भक्ति यदि हो, अहेतु की सेवा की वासना हो तो उसको कहते हैं भक्ति। तैल धारावत अभिच्छिन्न गति से उनके चरणों में मन की गति लगे और बिना किसी कारण से तो उसको कहते हैं अहेतुक। माने क्या? हम लोग जो कुछ कर रहे हैं अभी कारण से, कारण क्या? अधिकांश लोग ये समझते हैं संसार का ये जो दुख है कैसे जाए, हमें जो कुछ अभाव है ये कैसा है। तुम इधर मन दे करके बेटा सुनो तो नीचे बैठ करके एकदम मन से और हट जाए, तो प्रेम से सुनो जो कह रहा हूं ना, तुमको बहुत काम देगा। एक कहानी उसमें कहूंगा तो तुमको रुक दिया जाएगा। अहे चुकी हो और टूटने वाली बीच में न हो, मधु को ऊपर से गिराओ तो का सत्ता नीचे से ऊपर तक बच जाएगा। ठीक वैसे नयन तर्जमयी तो सत्ता न सूखने वाला अहेतु की उनके प्रति भक्ति भागवत में बनना है। मन की गतियां जब ब्रह्म भगवान के तरफ में जब चलती है और कभी टूटती नहीं है, उसका कोई हेतु नहीं है, स्वाभाविक रूप में हो तो इसे भक्ति भागवत में कहा गया। महाप्रभु जी के अत्यंत प्रिय व्यक्ति रूप गोस्वामी ने लिखा, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यानाप्रतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। भक्ति बहुत प्रकार की होती है। यहाँ पर लिखा गया बेस्ट, तो वहाँ पर और इसका कुछ दो और पर्यायवाची शब्द हैं, क्या होगा? गुड, बेटर, यकीन है ना? नहीं तो बेस्ट नहीं होगा। इसलिए कोई गुड चीज है, बेटर है, गुड से बेटर हो गया और एक हो गया बेस्ट। तो यहाँ पर उत्तम यदि लिखा उत्तमा भक्ति, तो एक मध्यमा भक्ति है और एक भक्ति, ये भक्ति एक वो भक्ति है सगुणा उपासक सगुणा अथवा कामनामयी सकाम भक्ति है। अपनी कामना के लिए प्रभु को स्मरण करते हैं तो ये भक्ति विकृत हो गई। कुछ कुछ अपनी और कुछ कुछ सुनने की, कुछ कुछ मैं करता हूँ उनके लिए भी कुछ अपने लिए, तो ये हो जाएगी मध्यमी। और सब कुछ करते हैं उनके लिए, ये साधारण लोगों के दिमाग में नहीं आएगा। जब साधु संघ बहुत कुछ करेगा, जब चित्त निर्मल होगा, तब इसको समझ सकते हैं। अब इसी चीज को समझाने के लिए एक थोड़ा सा उपाख्यान के माध्यम से सुना। महाराज दशरथ की इच्छा से आज्ञा से राम लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या को छोड़कर के वनवासियों का बेस बनाकर अयोध्यापुरी के शोक के समुद्र में डुबाते हुए चल पड़े। सारी अयोध्या के स्त्री पुरुष बाल वृद्ध वनिता उनके पीछे पीछे लगे। जब राम ही नहीं तो फिर अयोध्या क्या? जहाँ राम रहेंगे वहीं हम रहेंगे। यहाँ तक की कैकई ने तो कहा था, जब सब प्रजाओं ने कहा अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम वहीं पर चलेंगे, महाराज दशरथ ने कहा जी ये सारा खजाना, सारी प्रजाएं और सारा धन संपत्ति, ये सब सेनाएं सब राम के पीछे पीछे चले, हुक्म दे दिया। कैकई उठ करके खड़ी हो गई, ये डर हमको नहीं लेना है, हमने तो भक्त के लिए राजा कहने बनाने के लिए कहा है, तो प्रजा ही नहीं रहेगी, कोष नहीं रहेगा, खजाना नहीं रहेगा, सेनाएं नहीं है, मंत्री परिषद नहीं रहेगा, राजभवन नहीं रहेगा, राजभवन रहेगा, नगर रहेगा सुना, उसको लेकर के उल्लू सब रहते हैं इसमें, उसमें हम लोग रहेंगे, ऐसा बात नहीं क्या? सारी प्रजाएं यहाँ रहेंगी, राजकोष भी रहेगा, वैभव भी नहीं रहेगा, राम लक्ष्मण सीता ये तीनों जा। बड़ी पूरी के सब लोग बड़े दुखी हो गए, रामचंद्र जी सबको छोड़ करके रुलाते हुए सारी प्रजाएं उनके पीछे पीछे। दशरथ ने कहा जी या रथ पर बैठ करके जाएगा, जाओ सुमंत्र ले जाओ और रथ से उनको प्रसाद दिखला करके बन अब फिर ले आना। रामचंद्र जी बड़ी मुश्किल से रथ पर चढ़े, चढ़ नहीं रहे थे, जब बनबाजी ले लिया तो फिर यहीं से चलना है तो यहीं से चलेंगे, किंतु लोगों ने माना नहीं, जबरदस्ती चढ़ा दिया। जब वो वन में चले गए, पहली रात को जा रहे वो जहाँ पर कि निषाद राज था, वो प्रयाग से इधर में अयोध्या से थोड़ा सा दूर, वहाँ आकर के रात में सब लोग थे, सबको छोड़ करके केवट के नौका पर चढ़ करके दूसरा चले गए। चल निषाद राज को साथ लिया और किसी को नहीं, तीन वो और निषाद राज गंगा को पार कर लिया, प्रयाग में पहुंचे, भरतराज ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। बोले जी मैं कहाँ रहूं? क्योंकि आप जगत को आप रखते हैं और हमसे पूछते हैं। मैं कहा चित्रकूट में रहे, चित्रकूट में उनको कहा चित्रकूट में करे। वहां पर जब पहुंच गए, लक्ष्मण जी ने वहां पर कुटी बना दी, बड़ी सुंदर कोट के लिए बनाया घास फूस का, उसमें ये लोग गृह प्रवेश किया, ऋषियों ने हवन किया, भक्ति की पूजा की और उनको रखा। जब कुछ दिन बीत गए, इधर में भक्त जी और शत्रुघ्न निहाल में गए थे मामा के यहाँ। वहां से आए, उनको बुलाया गया और अयोध्या की दशा देख करके बड़े दुख में। जब पैकेज से पूछा जी ये क्या, पिताजी नहीं है घर में? तो नहीं, वो तो लोग पर लोग को सिखा गए। अरे मेरे भैया मैं देख रहा हूँ राम को, वो कहाँ गए? तो यही तो बात है, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया। क्या किया? मैं दशरथ से भी ये वर मांगा था और वर मांगने के साथ में राजा तो राम राम कह करके चले गए, और भैया को मैंने मांगा था जैसे आप वो बनने जाएंगे तो अपनी पत्नी को सीता को और लक्ष्मण ही लेकर के चले गए। तो हमारी आज से तुम्हारी मेरी मैया, आज से ये संबंध कट गया। यदि राम अप्रसन्न नहीं होते, आज तुमको मैं खंड खंड काट देता, मैं तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहता। मैया आपका नाता नहीं रहा, तू हमारी मैया नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं। इसके बाद तुम चले गए। अब सबको लेकर के मैंने कहा कि अब मैं अयोध्या नहीं रहूंगा, यहाँ का पानी भी नहीं पीऊंगा, मैं तो राम को मनाने के लिए चलूंगा, जो उनको मना करके ले आऊ। वशिष्ठ जी से आज्ञा मांगी, उन्होंने आज्ञा दिया। सब पुरी के सब लोग निकले, मैया जी दोनों निकली, कौशल्या जी और सुमित्रा जी। कैकेयी जी अब तक किसी से बोल नहीं रही थी, बड़ा उनको दुख हुआ कि बेटा भी हमारा आज हमको छोड़ दिया, जिसके लिए मैंने किया वो भी छोड़ दिया। ये मैया कहने के लिए राजी नहीं, हमसे बातचीत भी नहीं कि हमारा शत्रु बन गया, किसके लिए मैंने किया। कैकेयी जी जाकर के कौशल्या के चरण पकड़ लिए, आ रहा समझ में ना, चरण पकड़ लिया और रोने लगी। अरे क्यों रोती है बहन, अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, भरत हमको नहीं ले जाएगा, किंतु तुम्हारे आदेश को वो उल्लंघन नहीं कर सकता। राम उल्लंघन कर सकते हैं, किंतु भरत तुम्हारा आदेश उल्लंघन नहीं कर सकते, तुम हमको आदेश दो, हम तुम्हारे साथ। उन्होंने कहा अच्छा बैंक चलो। कितना करुणा का समुद्र उमड़ रहा है, राम की लीला में यही विशेषता है
करुणा,
करुणा और लोक शिक्षाएं थी, मर्यादाएं मर्यादाओं की शिक्षाएं। कृष्ण की लीला इसे दो अंगुल ऊपर है, इसलिए उसको समझना बड़ा भारी टेढ़ी खीर है, टेढ़ी खीर और समझ में नहीं आएगा, किंतु जब समझ में आ जाएगा ना, बस फिर कभी माया में नहीं आएगा। तो उनको लेकर के सभी लोग चल पड़े, धीरे 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 चित्रकूट में पहुंचे। लक्ष्मण जी ने, लक्ष्मण जी जो तम समा गए उनको देख करके सोचा जी आज मैं भक्त को मार डालूंगा। ऊपर में चढ़ करके शीशम के पेड़ पर देखा, बड़ी भारी सेनाएं आ रही हैं और उस पर सूर्य वंश का जो ध्वजा है उस पर वो आ रहा है, इसलिए बड़े वो समसम है। राम ने कहा कि जल्दीबाजी का निर्णय गड़बड़ का होता है, खूब सोच विचार करके कोई निर्णय लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुमको पीछे पछताना पड़े। हमको ये विश्वास नहीं हो जाए कि भरत हमसे लड़ने के लिए आ रहा है, उस इसमें बात दूसरी के जरा देखो तो आने तो दो, तुम्हारी वीरता तो कभी काम आ सकती है, आमने सामने पहले से मारने की क्या जरूरत है। बड़ी मुश्किल से उनको समझाया समझे, जब भर दिया है तो उनके चरणों में गिर गए। गिरने के बाद में पहला संवाद दिया कि पिताजी आपके गृह में राम कहते हुए राम दूसरी बार राम नहीं आया, फिर रामचंद्र जी
उनको मालूम नहीं चला,
कोई संवाद देने वाला कर सकते हैं पहले बात बस। तो पहला कर्तव्य क्या है, पिताजी का साथ करना, इसलिए पिताजी का सब मिल करके लक्ष्मण जी और लोगों ने तो साध कर दिया था, साध करने के बाद में चले थे, किंतु राम ज्येष्ठ पुत्र है, इसलिए वो और लक्ष्मण जी रह गए थे, वो वहीं पर गोदावरी के तट पर गए। कोई ब्राह्मण आया और उन्होंने उनको जलांजलि दी, इमली के बीज को पीस कर सत्तू बनाया गया। इमली
काला काला बीज होता है
और उसी के गुदे से पीस करके पानी में लगाकर उसका पिंड बना करके और अपने पिता वहां पर और दूसरा कुछ आटा नहीं, चावल नहीं, कुछ नहीं, तो इसको उन्होंने दिया। वेद वैदिक मंत्रों के साथ में दिया। इसके बाद में बड़े से उपमग्न होकर के यहाँ पर आ गए। अब इतने में ये लोग तो आए ही, ये खबर मिली महाराज जनक को, जनक भी अपने जमाता और बेटी को देखने के लिए। सारी प्रजाओं की इच्छा है जयराम लौट जाए, सबसे बड़ी इच्छा है भारत में ये जयराम लौट। रात में वो वशिष्ठ जी के यहाँ गए, महाराज वशिष्ठ जी आप हमारे कुल गुरु हैं, राम आपके आदेश को उल्लंघन नहीं कर सकते, आराम से बैठेगा कोई तो नहीं जा जाएगी। तो आप इनको आदेश दे दीजिए, आपके आदेश का उल्लंघन नहीं करेंगे ना, आप हमारे तरफ से कृपा करके ये राम से कहिए आप अयोध्या को लौट करके राज्य को स्वीकार कीजिए। वशिष्ठ ने कहा मैं ऐसी कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकते हैं, मैं ये गलत पथ पर हूँ जो उनको ले जा रहा हूँ, गलत पर नहीं हो तुम।
मैं कह नहीं सकता
किंतु राम गलत है ये भी मैं नहीं कर सकता, मैं अभी दुविधा में हूँ, अभी तुम ठीक है कि राम ठीक है, हम जब तुम्हारी तरफ से देखते हैं तो ऐसा लगता है तुम पक्के ठीक हो, और जब रामचंद्र जी की तरफ मैं देखता हूँ जो वो पक्का ठीक है, उसके बाद में कोई बिगाड़ नहीं, इसलिए मैं कैसे कर सकता हूं। जब वो नहीं माने बड़े दुखी हो गए, क्यों नहीं बोले वो वशिष्ठ जी भक्ति की रीति को जानते हैं, साधारण आदमी नहीं है, जो रामचंद्र जी के कुल के और रामचंद्र जी के गुरु हो सकते हैं तो वो कैसे होंगे भक्ति तत्व को जानने वाले, किंतु अभी किसी को दिखलाया नहीं कि मैं जानता। तब वो जाकर के रात ही रात में वो गए कौशल्या जी के, भैया हमारी एक बात उनको पूरी कर दी। उन्होंने क्या बेटा तुम्हारी बात पूरी करनी होगी तो ऐसे नहीं तुम हमारी बात को बतलाओ जैसे जरूर पूरी कर, तो बेटा पहले हमको बतलाओ ये क्या बात है, मैं ऐसे कैसे कहूं। तो जब देखा भट जी ने ये ऐसे नहीं कहे कि तुम, उन्होंने स्वीकार कर जाता तुम राम को कह दो ये अयोध्या को लौट करके राज्य को ग्रहण करें। ये मैं कैसे कह दू, तो कैसे नहीं मैं अन्याय कह रहा हूं, तो नहीं तुम अन्याय कह रहे हो तो फिर तो क्यों नहीं कहती, तो ये राम तो भी अन्याय नहीं कह रहा, मैं क्या करूं, राम भी अन्याय नहीं, वो पिताजी के आदेश को मानने के लिए वन में जा रहा है, तो मैं कैसे कह दूं। वो राम कहता है कि यदि केवल मैया या मेरे बाप कहते तो मैं होश ले लेता, ये मैं क्या करूं, किंतु मेरी मैया ने पहले कहा, कौन मैया और पिताजी ने भी उसका समर्थन किया, तो ये वोट उनका अधिक हो गया, इसलिए मैं वन में जाऊंगा उनके आदेश को पालन कर, इसलिए उनको मैं कैसे मना करूं, ये मत जाए। बात यह है ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा तो कभी नहीं तोड़ता, आप तुमको भी देखता हूं ऐसे ही, इसलिए मैं अन्याय कैसे करूं, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। इसके बाद में सुनैना जी को बुलाया गया, सुनैना कौन है,
पिताजी की मात्रा,
पिताजी की मैया बड़े जी ने बुलवाया वहाँ पर, कह के भी बैठी हैं सब लोग बैठे हैं, बड़े आदर से इनको वशिष्ठ जी ने अनाउंस किया। इसका निर्णय महा विदेह राज्य हैं, जनक हैं, वो निर्णय देंगे जो क्या करना है। भरत को और राम दोनों को बुलाया, कल सभा होगी, ऋषि महर्षि लोग आएंगे, बड़े बड़े ज्ञानी गुणी आएंगे और इसमें विचार होगा, और जो उचित विचार होगा वही भरत जी को और राम को आदेश दिया जाएगा। भरत जी को स्वीकार है, मैंने कहा जी हाँ हमको स्वीकार है, और राम से पूछा जी आपको स्वीकार है तो जरूर स्वीकार है, जो ये निर्णय कर जनक उसको दोनों के लिए मालने के लिए हम लोग बात करें। भरत जी को पक्का विश्वास है उनकी बेटी है ना सीता, तो वो कैसे कहेंगे जिसे बन में जाओ। और रामचंद्र जी कहते हैं कि ये बड़े विवेचक हैं, ये अन्याय कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए उन्होंने दोनों राजी हो गए। अब अनाउंस हो कर दिया गया जैसे कल बड़ी भारी सभा बैठेगी और उसमें निर्णय करेंगे वो, और उस निर्णय के लिए दोनों को मानने के लिए बात होंगे। ठीक, अब जब हो गया तो भरत जी चुपके से उनको बुलाया या उनके पास में चले गए सुनैना जी के यहाँ।
अच्छा, उसके बाद
निर्णय के बाद सुनैना जी के